पृष्ठ संख्या 76। भूतपूर्व दाइमियों तथा समुराई को जितनी पेंशन देने का वचन दिया गया था वह राष्ट्रीय कोष पर भारी बोझ सिद्ध हुआ। कई मास तक राजा के मंत्रीगण इसमें कमी करने का उपाय सोचते रहे। सन 1873 में पेंशनों के बदले नकदी और सरकारी बांड देने की योजना की घोषणा की गई। यद्यपि इस बांड द्वारा समुराई को जो राशि प्राप्त होती थी उससे प्राप्त होने वाली आय उनकी पेंशनों से कम थी, लेकिन फिर भी उनमें से बहुतों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसका कारण कुछ तो देशभक्ति की भावना थी, कुछ व्यापारिक तरीकों से उनकी अनभिज्ञता थी। इसके अलावा समुराई की नीति संहिता के अनुसार धन के पीछे पड़ना उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। शीघ्र ही 1876 में यह विनिमय अनिवार्य कर दिया गया और इस प्रकार योद्धा वर्ग द्वारा राज्य की ओर से प्राप्त विशिष्ट वंशक्रमागत संरक्षण समाप्त हो गया। सामंतवाद के अंत के कुछ ही वर्ष बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने वहां की केंद्रीकृत शासन प्रणाली को उतना ही दृढ़ और परिपूर्ण कर दिया जितना पश्चिम के किसी भी अत्यंत सुसंगठित राज्य में संभव था। सर्वप्रथम पुराने सामंती सेना को, जिसका संगठन विभिन्न जागीरों द्वारा प्रदान किया गया सैन्य दलों द्वारा होता था, जिसमें केवल समुराई वर्ग में ही भर्ती की जाती थी, समाप्त कर उसके स्थान पर एक ऐसी राष्ट्रीय सेना की प्रतिस्थापना की गई जिसमें सभी वर्गों के लोग समान रूप से भर्ती किए जाते थे। अब राज्य की रक्षा किसी एक वर्ग का विशेषाधिकार न था। यह सुअवसर सबको प्रदान ही नहीं किया गया था, अपितु सभी उपयुक्त आयु वाले व्यक्तियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण और सेवा अनिवार्य कर दी गई थी, जिसमें स्थान या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाता था। इस नई सेना का निर्माण पहले फ्रांसीसी सेना के और फ्रांस और पर्सिया के युद्ध के उपरांत जर्मनी के नमूने पर किया गया। सैन्य सेवा के इस राष्ट्रीयकरण से ही घनिष्ठ रूप से संबद्ध एक अन्य कार्य प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न सामाजिक भेदभाव और ऊंच नीच की प्रथा का निराकरण था। नागरिक या राजदरबारी, संभ्रांत वर्ग तथा सैनिक वर्ग के अंतर को समाप्त कर दिया गया। बाद में जिस नए अभिजात वर्ग का निर्माण हुआ वह न तो नागरिक या प्रशासनिक वर्ग था और न ही सैनिक वर्ग, वह था राष्ट्रीय अभिजात वर्ग। योद्धा वर्ग तथा जनसाधारण वर्ग के बीच पूर्व प्रचलित अंतर को मिटा दिया गया। स्वयं जनसाधारण वर्ग में प्रचलित प्राचीन श्रेणी विभाजन के अनुसार कुछ वर्गों को जन्म से ही भिन्न और दलित वर्गीय घोषित कर दिया गया था, और यहाँ तक कि एक वर्ग को तो अमानव की गर्हित संज्ञा भी दी गई थी। नई व्यवस्था में इन सामाजिक कुरीतियों का भी उन्मूलन कर दिया गया। बहुत से समुराइयों ने अपने पशुचक चिन्ह खड़ग का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया और सन 1876 में बाकी समुराइयों को भी ऐसा करने को बाधित किया गया। अब राजा की संपूर्ण प्रजा कानून की दृष्टि में समान थी, फिर भी नवोदित जापान के अधिकांश नेता भूतपूर्व समुराई वर्ग में से ही थे। यूं इस वर्ग का कानूनन अस्तित्व समाप्त हो चुका था, लेकिन अपने चरित्र व परंपरा के कारण आने वाले वर्षों में इसी वर्ग के लोगों का देश के नेतृत्व तथा शासन में प्रमुख स्थान रहा। सामंतों द्वारा संचालित स्थानीय प्रशासन के स्थान पर सुगठित नौकरशाही व्यवस्था की नींव डाली गई। इसके सदस्यों की नियुक्ति टोक्यो स्थित अधिकारियों द्वारा की जाती थी और वे उनके प्रति उत्तरदायी थे। इन्हीं अधिकारियों के हाथ में सारे देश का स्थानीय एवं केंद्रीय प्रशासन था। राजा के अपने प्रतिनिधियों द्वारा इस नौकरशाही व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का छोटा से छोटा व्यक्ति भी संरक्षित और शासित होता था। आरंभ में इस नौकरशाही व्यवस्था में समुराई वर्ग के लोगों का बड़ी संख्या में नियुक्त किया जाना स्वाभाविक ही था, क्योंकि एकमात्र ये ही सरकारी प्रशासन से भलीभांति परिचित थे। किसी भी ऐसे व्यक्ति की उस जागीर में नियुक्ति नहीं की जाती थी जो पहले उस जागीर का सदस्य रह चुका हो, लेकिन बाद में प्रशासनिक सेवा के पदों पर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्तियों की नियुक्ति की जाने लगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सभी वर्गों और जातियों के लोग बिना भेदभाव के सम्मिलित हो सकते थे। फलस्वरूप सरकारी पदों पर सैनिक वर्ग के अलावा अन्य वर्ग के लोगों भी बहुत बड़ी संख्या में प्रवेश करने लगे। इस नौकरशाही प्रशासन का प्रतिरूप अंततः 7वीं एवं 8वीं शताब्दी के सुधारों से मिलता है। इसके अलावा जापान पर पाश्चात्य देशों की प्रशासन प्रणाली का भी प्रभाव पड़ा, जिसमें कालांतर में जर्मनी में प्रचलित प्रणाली का प्रभाव विशेष रूप से अधिक था। पहले सुधार आंदोलन के नेताओं ने राष्ट्र के लिए एक कानून संहिता तैयार की। प्राचीन काल के सामंतों के रीति रिवाज, जो हर जागीर में भिन्न भिन्न होते थे, नए युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ थे। इसके अलावा संवेदनशील जापानियों के लिए अपरदेशीयता का कानून अत्यधिक अरुचिकर था, क्योंकि विदेशियों को जापानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखना जापान के न्यायालयों तथा कानूनों के लिए अपमानजनक था। अपरदेशीयता के मूल कारणों को ही हटाकर इसे समाप्त करने की आशा से नई सरकार ने यथाशीघ्र पाश्चात्य ढंग पर कानूनों का निर्माण आरंभ किया। सन 1871 तक दंड विधान के दो भाग तैयार किए जा चुके थे और इसके अनुसार कुछ अपराधों के लिए विदेशियों पर मुकदमा भी चलाया गया था। पाश्चात्य मापदंडों के अनुसार जिन यातनाओं या शारीरिक दंडों को निशंस समझा गया, उनका अंत कर दिया गया। ज्यूरी द्वारा अभियोगों के जांच की पद्धति को अभिस्वीकार नहीं किया गया, परंतु एक न्याय प्रणाली की शुरुआत की जा चुकी थी और इसे अप्रभावशाली एवं अनिंदनीय बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया। मुद्रा प्रणाली का भी पूर्णतया पुनर्गठन तथा राष्ट्रीयकरण किया गया। पुराने शासन काल में कागज व सिक्के की कई प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में थी। चीनी तरीके के आधार पर कागज की मुद्रा का व्यवहार होता था और प्रत्येक जागीर यथेष्ट संख्या में इसे जारी करने के लिए स्वतंत्र थी। इससे वहाँ अव्यवस्था एवं अस्थिरता आ जाना स्वाभाविक ही था। नए केंद्रीकृत प्रशासन के लिए एक रूप राष्ट्रीय मुद्रा का होना आवश्यक हो गया। फलस्वरूप व्यापारी वर्ग के समर्थन की भी सहज ही आशा की जा सकती थी। इसके अलावा प्रशासन द्वारा जारी किया गया प्रत्येक नया सिक्का तथा हुंडी जनता के सामने राजा तथा टोक्यो प्रशासन के प्रभुत्व का प्रमाण होती। इससे राष्ट्रीय संपत्ति में भी वृद्धि की संभावना थी। अमेरिका की अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए एक आयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा गया। उसके वहां से वापस आने पर जापान में दार्शनिक मुद्रा पद्धति अपनाकर नई मुद्रा प्रणाली प्रचलित की गई और अमेरिका के नमूने पर राष्ट्रीय बैंक और कागज मुद्रा चालू करने की योजना तैयार की गई।